जनाब माफ कीजिएगा, कोई बूढ़े मियां यहां से नहीं गुजरे?
नहीं नहीं तो
सलाम अलैकुम।
वालेकुम
सलाम। माफ कीजिएगा, एक बूढ़े शख्स यहां से तो नहीं गुजरे? बाल सफेद थे, दाढ़ी भी थी।
नहीं मैंने नहीं देखा।
दादाजान
क्या हुआ है?
तुम्हारे अब्बू बताए बगैर बाहर गए हैं, हमें ध्यान नहीं रहा।
ऐसे ही कभी कभी निकल जाते हैं अचानक।
मेरे खुदा, सड़क की तरफ ना निकल गए, कोई गाड़ी टक्कर ना मार दे।
जान ये कैसी बातें कर रही हैं?
झगड़ा क्यों कर रही
हैं? नहीं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी बातें कर रही हैं, इंसान परेशान हो जाता है।
दादी जान परेशान ना हो, वो उन्हें ढूंढ निकालेंगे।
मेरे खुदा।
परस्तु बेटा, मेरा मोबाइल कमरे में शेल्फ पर पड़ा हुआ है, जरा ले आना।
जी अच्छा।
मेहंदी कब गए?
पता नहीं, अभी तो यही था। तुम आए तो मैं समझी कि वो वापस आ गए। मोहसिन, मोहसिन।
अम्मी जान परेशान ना होइए, खुदा के लिए।
ये है अब्बू जान।
बहुत शुक्रिया मेरे।
कोई बात नहीं,
मैं समझता हूँ कि कहाँ गए होंगे। आप लोग परेशान ना हो, मैं उनको ढूंढ लूंगा।
खुदा करे कि वो जल्द मिल जाए, खुदा करे कि कोई हादसा ना हो। मेरे खुदा।
हेलो, क्या हुआ? ओह अच्छा, खुदा का शुक्र है। ठीक है, मैं अभी उनको लेके आता हूँ। अभी आता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम।
क्या हुआ?
बहुत बेहतर है, फिक्र ना करें, लेटी हुई है। मैं जाके देखूं जरा तूबा उठ ना गई हो।
ठीक
ठीक।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम बेटा।
अस्सलाम वालेकुम बुजा।
वालेकुम अस्सलाम।
मैं सदके जाऊं दादा जान?
मैं तुम पर फिदा हो जाऊं बेटा। शुक्रिया।
खुदा ना करे। पुपी कहाँ है?
सोने गई है, उसे सुबह सवेरे अस्पताल जाना होता है। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो दादा जान, आप कहाँ चले गए थे? हमें तो डरा ही दिया आपने।
मुझे लगा कि हमीद की बच्ची पैदा हुई है। जब फरस्तु को देखा तो समझा कि मेरा ख्याल गलत है। सोचा हमीद से जाके कहूं कि तुम्हारे भतीजे की भी तुम्हारी तरह लड़की पैदा हुई है। सड़क पर गुम हो गया, अचानक पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, समझा ही नहीं कि क्या हुआ। हाँ
दादा जान, आप पे कुर्बान जाऊं, मैं वादा करता हूँ कि हम इस चचा को ढूंढ लूंगा और उन्हें घर लेके आऊंगा। लेकिन आप आइंदा इस तरह बाहर ना जाइए।
आखिर उसे नहीं ला सकते क्योंकि नहीं जानते कि वो कहाँ गया है।
तो क्या आप जानते हैं?
मैं चाहता था कि जाऊं सुरैया के पास, सुरैया को उसका पता है।
वो भी नहीं जानती। मैं गया था उनके पास।
क्यों नहीं, क्यों नहीं, पर तुम्हें नहीं बताएगी।
अब्बू जान, हम हमीद को ढूंढ निकालेंगे, ये काम हमारे जिम्मे।
आप उसे कहेंगे मेरी जिंदगी में ही आ जाए मेरे पास ताकि मैं उसे देख सकूं, वरना मरने के बाद मेरी रूह भी सुकून रहेगी। मेरी रूह अजाब में रहेगी।
रोए नहीं अंबुजान, रोए नहीं। मेरी अमित को ढूंढ निकालेगा, खुदा के लिए रोए नहीं।
या अल्लाह, सलाम अलैकुम। कहाँ हैं आप लोग?
वालेकुम सलाम, ठीक हो?
ये लीजिए, शुक्रिया।
ये क्या है?
कुर्बानी का गोश्त, गोश्त फंजे बाकी है।
कबूल हो इंशाल्लाह।
खुदा कबूल करे। अबू कहाँ है?
सहन में है।
आप क्यों नहीं आई?
इंशाल्लाह अपने घर जाओगे तो आऊंगी
इंशाल्लाह।
अबू कैसे हैं?
ठीक हैं। आपके जाने के बाद उन्हें हमाम ले गए थे, बेचारे बारिश में भीग गए थे, लरज रहे थे।
ओह,
मैं कल फंस गया था, मेहरनूश को लाने नहीं जा सका।
कोई बात नहीं, इस दफा मैं आऊंगा तो साथ ले आऊंगा, फिक्र नहीं करो।
खूब, मेरा मतलब ये है कि मैं मसरूफ था, मेहरनूश खुद क्यों नहीं आई?
घर आई, देखा मैं अकेली हूँ तो मेरे साथ रुक गई।
बहुत बहुत शुक्रिया।
तुम्हारी बेटी कैसी है?
अल्हम्दुलिल्लाह।
मुझसे नाराज ना हो बेटा, वाकई उस घर से मेरी बहुत तल्ख यादें वाबस्ता हैं।
आपकी यादें इतनी तल्ख हैं कि हत्ता अपनी पोती को देखने तक नहीं आ सकती।
खुदा मेरी पोती को अपने माँ बाप के जेर साया सलामत रखे।
मैं मेहरनूश को बुलाता हूँ ताकि तुम्हारे साथ।
जरूरत नहीं है बुजान।
आप क्यों साथ नहीं जा रहे? जाइए, मेरी फिक्र ना करें।
ठीक है, मेरा जब भी जी चाहेगा मैं चला जाऊँगा।
असल में जाते हुए इसलिए आपके पास आया कि अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ आए, मैं साथ ले जाऊँगा।
मेहरनूश उठ जाएगी तो उसे भेज दूंगा बेटा।
शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ।
बेटा एक मिनट रुको, मैं गली के नुक्कड़ तक साथ आता हूँ।
ठीक है, मैं दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूँ।
ठीक है,
बखैरियत जाओ, बखैरियत रहना।
मैं अभी वापस आता हूँ। चलो बेटा।
दादा जान की तबीयत आजकल काफ़ी ख़राब चल रही है।
अच्छा,
मुझे भी पिछले चंद दिनों तक पता चला, एकदम से सब कुछ भूल जाते हैं, मुनीरे वाले घर की बातें करने लगते हैं, उस जमाने की जब हम सब साथ थे। कल समझे कि हमें चाचा की बेटी लैला पैदा हुई है, मेरी बेटी को लैला समझ के उसके कान में अज़ान दी। अबू, अबू।
हाँ।
मेरे ख्याल में आजकल तो वर्कशॉप भी बंद है, आप फारिग हैं, कभी कभी दादा जान के पास जाएं तो बेहतर ही होगा।
तुम भी मुझे कसूरवार समझती हो बेटा?
नहीं, कसम से मैंने ऐसी बात नहीं की।
करोगे भी तो हक बचाने भोगे, मैं उनका बेटा हूँ, मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए।
जान, मेरे कहने का मतलब ये है कि बहरहाल उनकी उम्र ज्यादा है, किसी वक्त खुदा ना खास्ता कोई हादसा।
मैं उस घर से निकल आया बेटा, जब मैं मुनीरा के घर से निकला तो जल्दी जल्दी उनको देखने जाता था, लेकिन सुरैया फूफी बहुत तंग करती थी।
खुदा का शुक्र है कि सुरैया फूफी अब वहाँ नहीं है।
मेरे साथ बहुत बुरी थी, सोचती थी मेरे कदम मनहूस हैं जिनकी वजह से शौहर उन्हें छोड़कर चले गए। मुझे वो बर्दाश्त नहीं करती थी। अलबत्ता ऐसा नहीं कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैं भी कसूरवार हूँ। मुझे बचपन से मुनीरिया के घर का सहन बहुत पसंद था। एक दिन जब अब्बू को मिलने गया था, सुरैया ने मेरी जिद में आकर पाइप से पूरे सहन और तख्तों को गीला कर दिया था ताकि मैं सहन में ना बैठ सकूँ, क्योंकि जानती थी मुझे वो सहन बहुत पसंद है। मुझे गुस्सा आ गया और लौट गया। मैंने भी गुस्से में कहा कि तुम नफ्सियाती मरीज हो और तुम मुझे परेशान करती हो।
मतलब आग के ऊपर तेल डाल दिया।
वो भी क्या तेल।
अच्छा,
कुछ नहीं, उन्हें गुस्सा आ गया, मुझे मारने उठी और अब्बू ने रोका। अभी वो चीख चिल्ला रही थी कि मैं घर छोड़ के आ गया। अब्बू ने कहा, बेटा तुम अब यहाँ नहीं आना, हम वर्कशॉप में आके तुमसे मिलेंगे। मेरी हालत बहुत बिगड़ गई।
आप हक बजानिब थे।
खुद से वादा किया कि इसके बाद इस घर में नहीं आऊँगा। इसके बाद जब सुरैया फूफी अपने घर चली गई, मैं पुरानी आदत के मुताबिक वहाँ जाने से कतराता था। मेरे दिल में कोई बात बैठ गई थी जिसे मैं जबान पर कभी नहीं ला सका।
समझता हूँ आप सोचते होंगे कि मैं बच्चा हूँ, ये बातें मुझे याद नहीं होंगी, लेकिन कसम से मुझे सुरैया फूफी की तमाम बुरी आदतें याद हैं। इस वक्त मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि अगर कभी कभी दादाजान को देखने जाएं तो बहुत अच्छा होगा। कसम से उनको अब हमारी बहुत ज़रूरत है। माफ़ कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप किस टाइम? नहीं, दस मैं वहाँ आऊँगा 10 बजे। खुदा हाफिज।
कौन था?
हमीद चचा का दोस्त।
कौन सा दोस्त?
यही मुस्तफ़ा दानिश्वर।
मुस्तफ़ा दानिश्वर, उससे तुम्हें क्या काम है?
आप उसे जानते हैं?
हाँ, तुमसे क्या काम है?
नहीं मालूम, लगता है हमीद चचा के बारे में कुछ जान गए। मैं असदुल्लाह साहब से मिलने गया था, उन्होंने उनका एड्रेस दिया, कहा कि मुमकिन है कि उनको पता होगा कि हमीद चचा कहाँ पर है।
नहीं बेटा, मैं और तुम्हारे दादा और हुमा फूफी कई बार उसके पास गए थे, उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम।
बिला वजह तो मुझे फ़ोन नहीं किया होगा, ज़रूर उनको कुछ इल्म होगा जो मुझे फ़ोन किया।
कब जाओगे?
कल 10 बजे।
अच्छा, तो मैं भी साथ आऊँ।
ठीक है, फिलहाल मुझसे कोई और काम नहीं।
नहीं बेटा,
तो मैं चलता
हूँ। खुदा हाफिज़। जाओ बेटा, खुदा हाफिज़। जाओ।
ठीक है, ठीक, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
ठीक है।
मदद नहीं चाहिए?
नहीं बेटा, शुक्रिया।
बाहर क्यों आ गई, अंदर आती?
बोर हो गई अंदर।
ठीक है, तो यहीं बैठो। बच्ची तो अभी सो रही है।
जी जी।
फिर यहीं बैठो फिर। देखो बेटा, नमक ना डालना इसमें, तुम्हारे जो है दादा खा नहीं सकेंगे इसे। ध्यान से लगा, मसाला लगाना।
एक काम जो मुझे बचपन की याद दिलाता है, यही काम है।
क्यों चला रही हो तुम? हाँ,
तेल तो है नहीं, जब ये आग पकड़ लेगा तो कोयलों के नीचे रख के हवा देंगे ताकि आग जले।
तुम्हारी फूफी बड़ी माहिर है।
तुम जवाब दे सकते हो?
मेहरान है,
बात कर लो।
हेलो, सलाम मेहरान।
सलाम अलैकुम भाभी, मेहदी है?
है, मसरूफ है, लेकिन एक मिनट होल्ड करना।
हेलो, सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम मेहदी भाई, कैसे?
हाँ ठीक हूँ।
वर्कशॉप आ सकते हैं?
क्यों, खैरियत तो है?
ये सांप भी खोटे निकले, उसने सईद को फोन करके कहा कि पैसे का इंतजाम नहीं कर सका।
मैं पहले दिन से जानता था, उसी दिन जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मैं समझ गया।
क्या हुआ है?
छोड़ो ये पकड़ो। देखो मेहरान, सुनो मेरे भाई, तुम मेरी बात सुनो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बात तो सुनो।
मेरा कहना है फिलहाल फानी साहब के फोन का जवाब ना दे।
क्यों?
इस तरह मजीद टाइम हासिल कर सकते हैं।
नहीं हो सकता, उसने वर्कशॉप देखी हुई है, सीधा यहाँ आके बेइज्जती करवाएगा। दूसरी ये कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बात शिकायत थाने और अदालतों तक पहुंचे। अब जब क्यों राजी हो गया है कि हम वर्कशॉप बेच के उसका पैसा दे दें, तो ये बेहतरीन फुर्सत है। मुझे खामोशी से जल्द वर्कशॉप के बेच के उसका पैसा देना है। मुझे यकीन है कि अगर वो मुसीबत में ना होता तो वर्कशॉप छोड़ने के लिए तैयार ना होता। मुझे ज़रा इस शुक्री को एक फ़ोन करने दो, देखो। हेलो, सलाम अलैकुम शुक्री साहब, फरामंद हूँ। जनाब, आपको एक जहमत देना चाह रहा था, अगर मुमकिन हो तो उस शालची साहब को एक फ़ोन करके कहें कि अगर अभी उन्हें वर्कशॉप चाहिए तो हम बेचना चाहते हैं। जानता हूँ जनाब, मुमकिन हो तो एक ट्राई और कर लें, मैं इस वक्त वर्कशॉप में ही हूँ। जी ठीक है, यहाँ ना हुआ तो अहमद चचा से कहें, वो मुझे ढूंढ लेंगे। बहुत शुक्रिया शुक्र साहब। शुक्रिया जनाब, खुदा हाफिज़ जनाब, खुदा हाफिज़। अरे अबू जान आ गए। मेहरान, मुझे इस वक्त अबू जान के साथ कहीं जाना है, कोई काम तो नहीं?
नहीं,
तो चलता हूँ।
मुझसे नाराज़ ना हो मेहदी भाई।
ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी नीयत जरूर नेक थी, हमारी मदद करना चाहते थे। नाराज नहीं, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। चले, देर हो रही है। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज वाजी साहब। खुदा हाफिज।
बहुत बहुत खुश आमदेद। आइए तशरीफ
लाइए। शुक्रिया
लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जनाब आपका बेटा बिल्कुल अपने दादा पर गया है, माशाल्लाह सूरत और सीरत में।
लीजिए,
खुदा करे।
हाजी नेमत की कॉपी है, अल्लाह सलामत रखे।
नवाजी जनाब।
जी शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तशरीफ रखे।
मुस्तफा साहब माफ कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप बहुत मसरूफ हैं, हम गलत टाइम पर मुजाहिम हुए।
प्लीज, ऐसी बात नहीं है,
आपकी मेहरबानी है। जरा नवाजी, मैं ये जानना चाहता था कि आपको हमीद चचा के बारे में कोई खबर मिल गई है जो हमें फोन करके बुलाया है?
वल्ला खबर तो नहीं है।
उस दफा जब मैं अपनी बहन के साथ यहाँ आया था, आप हमीद पर बहुत गुस्सा थे।
गुस्सा तो नहीं था हाजी साहब, नाराज था। खुद हाजी फरहमंद भी समझ गए थे कि मैं किस लिए नाराज हूँ। उन्होंने मुझे हक बजानिब करार दिया, वरना हमारे पास जो कुछ है हाजी फरहमंद की तुफैल से है।
हम इस वक्त अपने दादा जान की सेहत की वजह से हमीद को ढूंढ रहे हैं ताकि उनको घर लौटा सके और वो घर आए।
आप समझ रहे हैं कि वापस आ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा?
क्या मतलब, इंसान अपने बच्चों से बाखबर हो जब बेहतर है या बेखबर हो जब बेहतर है?
हकीकत यह है कि हर बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों की कामयाबी देखे। अगर ऐसा ना हो तो मेरे ख्याल में बेखबर होना ज्यादा बेहतर है।
आप इस बात का फैसला हमारी फैमिली को करने दें, मतलब दादा जान और हम सब ये चाहते हैं कि चाचा हमीद घर वापस आ जाएं। ये और बात है कि ये जुदाई पहले ही दिन से गलत बुनियाद पर रखी गई थी, लेकिन अगर हम उनसे बेखबर रहें तो उनका कोई मसला हल नहीं होगा।
सच है कि जब से हमीद से मेरी शराकत दारी खत्म हुई है मैं तकरीबन उससे बेखबर हूँ, लेकिन जानता हूँ कि हालिया दिनों में आरश कमाली नाम के एक फर्ज से बहुत घुल मिल गए हैं।
ये बात तो हम खुद भी जानते हैं, आरश कमाली उनके लिए काम करते थे।
अगरचे काम करते थे लेकिन उनकी दोस्ती काम के रिश्ते से बढ़ गई थी।
वो बेचारा नशा करने लगा था, तुम्हारे चाचा हमीद खुदा की रजा के लिए उसे अपने पास ले आए थे।
आपके पास इस आरश कमाली का कोई एड्रेस वगैरह है क्या?
उसके बाप के घर का एड्रेस मुझे पता है। उस दफा जब मैं तुम्हारे दादा के साथ उसके घर पर गया था, मनुष्यात की स्मगलिंग के जुर्म में वो जेल में था। उसकी बेचारी अपाहिज माँ अपनी बेटी के साथ वहाँ रह रही थी। मैं बाद में भी कई दफा वहाँ गया।
साथियों ने बताया कि हाल ही में जेल से रिहा होकर आए हैं, मुझे यूं बताया गया है।
मुझे यकीन है कि उसे हमीद के बारे में कोई इत्तला नहीं है। मैं उन दिनों वहां ज्यादा जाया करता था, कभी भी हमीद को उस तरफ नहीं देखा। हारिश के साथ हमीद का असल मसला उसके नशे की वजह से था। कई दफा उसे निकाला था लेकिन उसकी माँ की खातिर दोबारा उसको काम पर रख लिया था।
हमीद के साथ मेरे इख्तलाफात की वजह यही आरश था। आरश गलत आदमी था, हमीद उसके घर बहुत आता जाता था, उसके साथ बहुत घुल मिल गया था। मेरी मरहूमा माँ कहती थी कि बुरा आदमी चूहे के फुजले की मानिंद है, देगचे में गिर जाए तो पूरा देगचा फेंकना पड़ता है।
खुदा आपकी माँ को गरीक रहमत करे, लेकिन रिश्तेदार देगचे का खाना नहीं है कि इंसान जब चाहे उसे गिराए। आपके पास इस आरिश का कोई नया एड्रेस है क्या?
अगर वो उसी पुराने घर में है तो मुझे पता है।
दरअसल मेरे पास भी वही पुराना एड्रेस है जो आपके वालिद साहब के पास है। मैं नहीं जानता कि मौजी साहब को वहाँ का एड्रेस पता होगा।
अच्छा, आप ठीक है अबू?
शुक्रिया, ठीक हूं।
अरे अरे क्या हुआ पुजान? अरे अचानक अबू, अचानक ये क्या हो गया?
ठीक
तो है, क्या हुआ? मैं अभी पानी लेकर आया।
ठीक हूँ, बैठ रही।
क्या हुआ आखिर आपको?
مصطفیٰ بہت بری باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، مسلسل ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ حمید نشہ کرنے لگا ہے۔
نہیں، اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی ابو جان۔
کیوں نہیں بیٹا، کہہ رہا تھا کہ بہتر ہے تمہارے دادا جان اسے نہ دیکھیں۔
ابو جان، شاید اس کا مطلب یہ رہا ہوگا کہ چچا حمید کی مالی حالت خراب ہو گئی، اور اگر دادا جان اس حالت دیکھیں گے تو۔ دیکھیے ابو جان، اگر آپ میرے ساتھ حمید چچا کو ڈھونڈنے آنا چاہتے ہیں تو اس کی دو شرطیں، نہ ٹائم سے پہلے نتیجہ عکس کرے اور نہ ایک دم سے پریشان۔
مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس اس عارش کمالی کا نیا ایڈریس تھا۔ آؤ واپس جا کے اس سے،
میں بعد میں اس سے لے لوں گا۔
اب کیوں نہیں؟
اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ پریشان۔
کیوں بیٹا، حمید میرا بھائی ہے۔ اوہ اچھا، پہلے بھی ہم اس کے پاس جاتے تھے تو وہ جانتا تھا لیکن نہیں بتاتا۔
کیا نہیں بتاتا تھا؟
یہی کہ حمید نشہ کرنے لگا ہے۔
ابو جان، کہاں سے معلوم کہ حمید چچا، چلیے فرض کیجئے کہ حمید چچا کو نشے کی عادت ہو گئی، تو ایسی بات تو اتنی آسانی سے نہیں بتائی جا سکتی ہے نا، خاص کر جب ہم وہ پھپھی بھی آپ کے ساتھ تھی۔
پتہ نہیں بعض لوگ کیوں اتنے بے رحم ہوتے ہیں کہ صرف بیٹھ کر دوسروں کی تباہی کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھو ہم کتنی دفعہ اس کے پاس گئے کہ اگر حمید کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو ہمیں بتائے، 4-5 مرتبہ، لیکن یہ کچھ نہ بولا، صرف حمید پر اپنے قرضے کی بات کرتا تھا۔ اگر ابو جان قسطوں پر دکان خریدنے کے لیے اس کے ضامن نہ بنتے تو یہ حمید کو جیل ڈالنے کا ارادہ کر چکا تھا۔
خیر اب تو سب گزر گیا، جو بھی ہوا زیادہ اہم نہیں، اب اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح چچا کو لانا ہے۔
اگر سچ مچ ایڈکٹ ہو گئے ہیں تو کیا کریں گے؟
ارے ابو جان چلیں، آپ فرض کریں کہ حمید چچا ایڈکٹ ہیں، پہلے انہیں ڈھونڈنے دیں، بعد میں ان کا بھی علاج ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے بیٹا، میں نہیں آتا ہوں، تم جاؤ ایڈریس لے لو اس سے۔
ٹھیک ہے ابو جان، میں ابھی آتا ہوں۔
ڈش واشر کی قیمت کتنی ہے؟
یہ 1,450,000 تومان ہے۔
کتنے لوگوں کی؟
6 افراد کی۔
بہت شکریہ۔ اور یہ ویکیوم کلینر کتنے؟
یہ 8.5 لاکھ تومان کا ہے۔ معاف کیجیے گا، ایک منٹ۔
کوئی بات نہیں، کوئی بات۔
آرش کا نیا ایڈریس چاہیے ہم کو۔
رکو ابھی لاتا ہوں۔ حاجی صاحب کے سامنے کہنے کی جرات نہ کر پایا، شاید آپ کو بتانا ضروری ہو کہ حمید وہ حمید نہیں رہا۔
جس زمانے میں ابو لوگ آپ کے پاس آئے تھے اس وقت بھی ایڈکٹ تھے وہ،
تبھی شروع کیا تھا۔
تو اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ شروعات ہی شاید روکا جا سکتا تھا نا۔
مجھے خود بھی یقین نہیں تھا۔ ہاں بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ حاجی میرے منہ سے سنے کہ حمید ایڈکٹ ہو گیا ہے۔ میرا حمید کے ساتھ مالی اختلافات تھے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا میرا، ایسے میں لوگ کیا سوچتے، یہی نہ کہ دشمنی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔
سمجھتا ہوں، انسان اکثر و بیشتر اپنے ہی فائدے اور مصلحت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ خدا حافظ۔
مہدی صاحب، یہ بات حاجی صاحب کو مت بتائیے گا۔
آپ فکر نہ کیجیے، وہ پہلے سے ہی سمجھ چکے ہیں۔
مہدی،
مہرنوش ابھی کام سے واپس نہیں آئی ہے۔
کیوں نہیں آئی؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے پرستو؟ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے۔ جاؤ کپڑے بدلو، ہمارے گھر جانا ہے۔ اب آپ بھی وہاں نہ بیٹھیے، آج رات سب کو ہمارے یہاں چلنا ہے۔
مہدی لوگوں کے گھر چلے؟
پتا نہیں، تم لوگوں کا جی چاہے تو جاؤ، میں نہیں آؤں گی۔
امی صرف آپ اپنے بارے میں کیوں سوچتی ہیں؟
مجھے آپ لوگوں سے کیا کام ہے؟ میں نے تو کہا جس جس کو جانا ہو چلا جائے۔
معاف کیجیے امی، لیکن آپ کو کام ہے، اگر ہم گئے تو ایک ہفتے تک یہاں پر اعصابی جنگ ہونے والی ہے۔
بیکار بیٹے مت بولو، تمہارا جہاں جی چاہتا ہے چلی جاتی ہو، جو کرنا چاہتی ہو کرتی ہو، تم کیسے بول سکتی ہو؟
یہ لو، جانے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔
امی بس بھی کیجیے، کیا جب سب حمید چچا کی طرح تباہ ہو جائیں گے، ایڈکٹ ہو جائیں گے، تب آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ بس کیجیے نا۔
کیا مطلب ہے؟
چچا ایڈکٹ ہو گئے ہیں؟
کیا کہہ رہا ہے محسن صاحب؟ یہ مہدی کیا کہہ رہا ہے؟ کیا مطلب کہ حمید ایڈکٹ ہو گیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سوسن ضرور جا کے دوسروں سے مدد مانگتی، آپ کی امی لوگوں کو اطلاع دیتی، کسی نہ کسی طرح ہمیں خبر پہنچتی۔ محسن، میں آپ ہی سے بات کر رہی ہوں۔ محسن
ابو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو
محسن،
ابو جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟
उफ़, क्या होगा? मैं तो समझ ही में नहीं आ रहा है अब क्या होगा।
मैं जाऊं क्या उनके पीछे?
फोन करो उनको, देखो क्या होता है। हाय, अब क्या होगा भाई, तो बहुत परेशानी की बात हो गई। उफ़,
मेहदी फोन नहीं उठा रहा। काश ये बात झूठ हो। अगर हमी चाचा एडिक्ट हो गए होंगे तो मेरे लिए भी बहुत बुरा हो जाएगा।
तुम्हारे लिए क्यों बुरा होगा?
अरे अम्मी जान, अगर किसी के चाचा एडिक्ट हो तो अच्छी बात तो नहीं है ना।
हाय मेरे खुदा, सबको अपनी फिक्र लगी हुई है। अगर तुम्हें इस फैमिली से जरा भी हमदर्दी होती तो इस तरह की बात ना करती।
मैंने तो कोई बुरी बात नहीं की है। किसी के भी खानदान में कोई भी एडिक्ट हो जाता सब नाराज ही तो होते हैं।
तुम बिल्कुल बेएहसास लड़की हो। तुम्हारे हमारे साथ कोई एहसास आते हैं जो चाचा के लिए होंगे?
अरे आप खुद नाराज नहीं है? नाराज है ना, मेरी भी तरबियत आप ही ने की है।
तुम खुद को दूसरों से मत मिलाओ। मेहदी की तरबियत भी मैंने ही की है।
ओहो मेहदी, कल तक तो मेहदी सबसे बुरा लड़का था क्योंकि वो मुनीरिये वाले घर में चला गया था। आज क्या हो गया?
मेरे साथ इतनी बहस मत किया कर लड़की। मैं तुम्हारी जबान का मुकाबला नहीं कर सकती, तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। छोड़ो मेरी जान।
अरे जब भी आपके पास कोई जवाब नहीं होता आप यही कहती हैं।
मेरान, खुदा हाफिज, बाद में मिलेंगे तुमसे, ठीक है? सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो?
तुम कैसे हो? मैं तो ठीक
हूं। क्या खबर?
कुछ नहीं, आजकल नजर नहीं आ रहे।
मसरूफ हूँ। तुम क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं, हमेशा की तरह। मेहमारियान की क्या खबर है?
कुछ नहीं, फिलहाल तो कोई खबर नहीं है। अलबत्त साथी कह रहे हैं कि कामों के पीछे लगा हुआ है।
सुना है नाजरीन साहिबा के साथ रिश्ता तोड़ दिया।
यार तुम लोगों को यूनिवर्सिटी में और कोई काम नहीं है, इन्हीं बातों के पीछे लगे रहते हो।
मेहरान, वो जो रुजबे है ना, डॉक्टर रुजबे बहानी का बेटा, लड़के कह रहे थे कि उसने नाजीन का रिश्ता मांगा है। सोचा मेरे दोस्त हो, दूसरे से सुनकर दुखी होने से बेहतर है मेरी जबानी सुनो। दुखी हुए?
नहीं नहीं, किस लिए दुखी होऊंगा?
मुझसे कोई काम?
नहीं नहीं, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
ठीक हो?
ठीक ही हूँ।
नाजनीन, लोन का काम बन रहा है।
बड़ी जल्दी?
हाँ, एक दोस्त मिला है, वो हमारे काम दुरुस्त कर रहा है। जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो दोबारा आके तुम्हारे अब्बू से बात करूंगा। खुश नहीं हुई?
लोन के लिए कुछ ज्यादा नहीं।
क्यों?
पता नहीं, सोचती हूँ। अभी तो मुश्किलात की इब्तिदा है, बहुत जल्द तमाम रकम वापस करनी है।
नहीं यार, इस तरह अगर सोचेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा बताओ, लड़के कह रहे थे कि ये यूनिवर्सिटी के डीन का लड़का तुम्हें तंग करता है ना?
क्या मतलब?
मतलब ये कि तुम्हारा रिश्ता मांगा है।
ये कौन से लड़के हैं जो तुम्हें इस तरह की खबरें पहुंचाते हैं? बड़े चोलखोर हैं।
नाज़िम बात मत टालो, जवाब दो। ऐसा तो नहीं कि वो डीन का लड़का है और मुझसे ज्यादा मालदार है तो?
मैं ऐसी लड़की लगती हूँ मेहरान?
बात ये नहीं कि ऐसी लड़की हो या वैसी लड़की हो, बात यह है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? असली साहिबा, असली साहिबा, रुकिए
जी।
आओ मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ, रास्ते में बात करते हैं।
मेहरान, तुम अगर मेरे वालिद को इज्जत देना चाहते हो तो उनके वादे पूरे करो।
माजरत चाहता हूँ, ऐसे ही एक बात मुंह से निकल गई, मेरा कोई खास मतलब नहीं था। तुम्हें पहुंचाता हूँ, रास्ते में बात करते हैं।
किस बारे में? हाँ, इस बारे में कि जब उसने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरा रद्दअमल क्या था।
कितनी दफा कहूँ, मेरा कोई खास मतलब नहीं था, मैं कुछ और कहना चाह रहा था।
क्या मतलब मेहरान? इधर उधर से सुनी हुई बातों से मेरे बारे में राय कायम कर लेते हो और फिर कहते हो कि बस सॉरी।
नाज़नीन, क्या हम एक दूसरे से इतने गैर हैं कि मुझे इन बातों को दूसरों के मुंह से सुनना पड़ता है? तुमने खुद क्यों नहीं बताया?
नहीं बताया क्योंकि मेरे लिए अहम नहीं
थी। लेकिन मेरे लिए थी। अच्छा ठीक है, मैं मजीद बहस नहीं करते हैं, हम तुमसे माजरत चाहता हूँ। कहना था एक बात मुंह से निकल गई, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। आओ रास्ते में बात करते हैं ना।
अपने वादे पूरे करो मेहरान, खुदा हाफिज़। अम्मी,
जी
तुम्हारे मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, उनका क्या करोगी? अगले हफ्ते शुरू होने वाले हैं।
मुझे मालूम है, बहुत पढ़ा है मैंने, मेरे नंबर आ रहे हैं क्लास में।
बैठ सकती हूँ?
इजाजत क्या मांग रही हो, बैठ जाओ।
बेटा मुझसे नाराज हो?
बच्ची बन गई हो, नाराज क्यों होंगी?
पता नहीं।
छोड़ो बहन, मैं किसी भी मर्द की खातिर तुमसे नाराज नहीं होंगी।
आज मैं एक डॉक्टर के पास गई थी।
किस चीज की डॉक्टर के पास?
उनका नाम डॉक्टर नईमाई है, स्किन और ब्यूटी स्पेशलिस्ट है, बहुत मशहूर है।
किस लिए गई थी?
मैंने उनसे तुम्हारे चेहरे के बारे में बताया, उन्होंने कहा कुछ टाइम तक तो इफेक्ट्स रहेंगे।
मैंने भी तो यही कहा था, तुम लोग मान नहीं रहे हो।
लेकिन उन्होंने कहा अगर ज्यादा अरसे तक ठीक ना हुआ तो जरूर कोई मसला होगा, तुम्हें जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, देखो अभी भी ठीक हो रहा है।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी भावें, तुम्हारी पलकें सब सही थी, अचानक ये क्या किया?
जब ठीक हो जाऊंगी तब देख के समझ जाओगी मैंने क्यों ये काम किया।
अम्मी कहाँ थी?
नहीं मालूम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आई?
बस अभी।
ये अपने कमरे में है?
जी।
देखो अपने साथ क्या कर लिया कि कमरे से भी बाहर नहीं आ सकती।
अम्मी जान।
ए मेरे खुदा, मैं क्या करूँ, मेरे सामने तो कोई भी रास्ता नहीं है।
अम्मी आप बिना, अरे छोड़िए उसका दिल जो चाहे करने दीजिए, आप ही तो कहती थी आखिरकार खुद ही को नुकसान पहुँचाएगी।
तो क्या अपनी औलाद को ऐसे ही छोड़ दूँ?
क्यों नहीं, कल जब यूनिवर्सिटी जाएगी तो सारी लड़कियां देखेंगी, उस पर हंसेंगी, तो उसको समझ में आएगा कि उसने क्या गुल खिलाया है। फिलहाल तो आपकी बातें नहीं सुनेगी।
तुम जब माँ बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ।
अभी भी समझ रही हूँ अम्मी जान, सुबह से अभी तक उसी के बारे में सोच रही हूँ। कॉलेज में भी इतना गुस्सा था कि कोई भी मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। अम्मी जान हम कुछ भी नहीं कर सकते।
पता नहीं ये किसको पड़ गई है, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही नहीं थी, मैंने बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं किया अपने साथ।
अरे ठीक हो जाएगा, हमेशा थोड़ी ऐसे रह जाएगा।
कितना टाइम लगेगा ठीक होने में?
नहीं मालूम, इंटरनेट में पढ़ा था कि 3-4 महीने के बाद ऐसा ऐसा थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी।
थोड़ी सी? आह खुदाया, तुम्हारे अब्बू का फोन है, तुम्हारी दादी के घर जाने वाले हैं।
अरे उनको क्या हुआ?
जुकाम हो गया है, देखते हैं आती है यहाँ पर कि नहीं।
यही है प्लॉट नंबर, मालूम है आपको?
नहीं, बस एक दफ़ा उसके साथ आई थी, इसको घर से कुछ चीज़ उठानी थी, देखा किसी घर में गया
तो आप उसका घर कैसे तलाश करोगी?
ये तो कोई मसला नहीं।
डरती हो?
नहीं, डरना क्यों?
चाहो तो घर वापस चलते हैं।
नहीं, क्या कर रही हो?
चलते हैं, जब ज़हनी तौर पर तैयार होगी तब आएंगे।
मैं तैयार हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि बेहतर नहीं था कि चंद दिन सब कर लेते, जब वो पैसे ना देता तब आते, बेहतर नहीं था?
चंद दिन तो किया, चंद महीने भी सब्र करोगी, फरहाद तुम्हारा पैसा देने वाला नहीं। तुम खुद भी इस बात को खूब जानती हो, लगता है तुम अभी उससे बहुत डरती हो और इस काम के लिए तैयार नहीं हो।
रुको, मैं किसी से नहीं डरती। माफ कीजिएगा, शायस्ता साहब तशरीफ रखती हैं।
गलत बिल दबाई आपने।
माजरत चाहती हूँ, ये फानी साहब का घर नहीं है।
नहीं, 6 नंबर की बिल दबाई आप।
ओह माफ कीजिएगा, माजरत चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, मेहरबानी करके दरवाजा बंद ना करें, मुझे शायस्ता बहन के घर जाना है, लेकिन उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ।
जी आइए, मैं रोया हूँ, मेरा सलाम भी पहुँचाएं।
ज़रूर
जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज।
सलाम अलैकुम।